नमस्कार भारत, तारीख 22 नवंबर, दिन रविवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पेरिस की तर्ज पर हमले की चेतावनी, ब्रसेल्स हाई अलर्ट पर।
Il y a suffisamment d'éléments en tout cas pour que le centre de crise estime qu'il y a une menace imminente et précise.
पाकिस्तान के झेलम में कथित तौर पर कुरान को जलाए जाने की खबरों के बाद भीड़ ने लगाई फैक्ट्री को आग। भारत के जयपुर में आर्ट फेस्टिवल में नकली गाय पर मचा हो हल्ला। ले चलेंगे बनारस, जहां मनाया जाता है उल्लूक महोत्सव।
देश में और दुनिया में जिस ढंग का उल्लूपना चल रहा है, वह उल्लूपना दुनिया के लिए और देश के लिए उचित और सम्यक नहीं है।
खबरें और भी होंगी, लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, समीर आत्मज मिश्र से। बेल्जियम में राजधानी ब्रसेल्स में पिछले हफ्ते पेरिस में हुए चरमपंथी हमलों जैसे हमले की चेतावनी के बाद ब्रसेल्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि ब्रसेल्स में कई जगह पेरिस जैसे हमलों की धमकी मिली है। चेतावनी के चलते मध्य ब्रसेल्स के ज्यादातर कैफे और बार खाली पड़े हुए हैं और बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। पिछले हफ्ते पेरिस में हुए हमलों में 130 लोग मारे गए थे और हमलावरों में से कुछ ब्रसेल्स में ही रहते थे। यहां तक कि प्रमुख संदिग्ध सलाह अब्दुस्सलाम के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी बेल्जियम ही लौट कर गया है। अब्दुस्सलाम की तलाश अभी भी जारी है। बांग्लादेश में दो विपक्षी नेताओं को युद्ध अपराध के आरोप में कल फांसी दे दी गई। सलाहुद्दीन कादिर चौधरी और अली एहसान मोहम्मद मुजाहिद पर 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए स्वतंत्रता युद्ध के दौरान युद्ध अपराध का आरोप था। दोनों नेताओं की दया याचिकाएं राष्ट्रपति ने खारिज कर दी थीं और उसके तुरंत बाद दोनों को फांसी दे दी गई। संसद में एक समय काफी प्रभावी नेता रहे चौधरी को हत्या और प्रताड़ना के लिए दोषी ठहराया गया था। वहीं अली मुजाहिद बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी के बड़े नेताओं में से एक थे। इसराइल की पुलिस का कहना है कि ताज़ा हमलों में 4 इसराइली नागरिकों की छुरा भोंक कर हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार दक्षिणी शहर किरयात गात में 2 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। हमलावरों की तलाश जारी है। पिछले 2 महीनों में फलस्तीनियों के हमले में अब तक 17 लोग मारे जा चुके हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है, मैं अपनी कार चला रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरा जानने वाला एक व्यक्ति अचानक गिर पड़ा। जब तक मैं उसके पास पहुंचता, तब तक 2 महिलाओं को भी चाकू लग चुका था और दोनों घायल हो चुकी थीं। एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तरी म्यांमार में हुए भूस्खलन में कम से कम 40 लोगों के मारे जाने की आशंका है और दर्जनों लोग लापता हैं। कचिन राज्य में ये भूस्खलन उस क्षेत्र में हुआ जहां कई खदानें अपना कचरा डालती हैं। भूस्खलन में लोग इस कचरे को के नीचे दब गए। मरने वालों में ज्यादातर वे कूड़ा बीनने वाले लोग हैं जो इस कचरे के ढेर पर या उसके आसपास रहते थे। श्रीलंका की प्रमुख तमिल पार्टी ने सरकार से मांग की है कि खुफिया हिरासत सेल्स की सही तरीके से जाँच की जाए। हाल ही में इन्हें संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने खोला था। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि वहां कैदियों को प्रताड़ित किया जाता है। क्राइमिया से मिल रही खबरों में कहा गया है कि शनिवार रात से ही यहां बिजली नहीं आ रही है क्योंकि यूक्रेन से आने वाली बिजली बंद कर दी गई है। क्राइमिया पर पिछले साल रूस ने कब्जा कर लिया था, फिर भी यूक्रेन अभी तक वहां बिजली आपूर्ति जारी रखे था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबर से। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि राजधानी ब्रसेल्स में पिछले हफ्ते पेरिस में हुए चरमपंथी हमलों जैसे हमले की चेतावनी मिली है, जिसके चलते ब्रसेल्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक इस बात का डर है कि हथियार और विस्फोटकों से लैस कई लोग हमला कर सकते हैं, यहां तक कि कई जगहों पर हमला कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते पेरिस में जो हमले हुए थे उनमें 130 लोग मारे गए थे और बताया जा रहा है कि हमलावरों में से कुछ ब्रसेल्स में ही रहते थे। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए समीर आत्मज मिश्र से।
ब्रसेल्स में हमलों की गंभीर चेतावनी के बाद बेहद सतर्कता बरती जा रही है। इस चेतावनी के चलते रविवार तक मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। बेल्जियम के अन्य इलाकों में भी सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी ब्रसेल्स में। फिर भी स्थिति को गंभीर माना जा रहा है। बेल्जियम के विदेश मंत्री डिडियर रेंडर्स ने लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की चेतावनी दी है। हमारे पास जो सूचनाएं हैं उनके आधार पर कह सकते हैं कि चरमपंथी हमले का खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए अलर्ट को 4 गुना बढ़ा दिया गया है, खासकर ब्रसल्स में। लेकिन दूसरी जगहों पर भी लोगों से अपील की जाती है कि जरूरत न हो तो घरों से न निकलें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। मेट्रो को बंद कर दिया गया है क्योंकि वो हमलों के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। बेल्जियम के विदेश मंत्री के शब्द। अधिकारियों ने इस बात की भी सिफारिश की है कि देश में फुटबॉल मैच जैसे बड़े आयोजनों को रद्द कर दिया जाए। भारी सतर्कता, कड़ी चौकसी और सरकारी चेतावनी के चलते बाजारों में जहां लोगों का आना कम हो गया है, वहीं कुछ लोग इसे सही कदम भी बता रहे हैं। ब्रसेल्स के एक बाजार में इस दुकानदार का कहना था, ये पूरा इलाका इस समय मजबूत सुरक्षा घेरे में है, जिससे लोग खुद को महफूज समझ रहे हैं। इससे हमें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता नहीं रहेगी। वहीं एक अन्य दुकानदार का कहना था, यहाँ देखिए, दुकानदारों जितने ही आपको खरीदार भी दिखाई पड़ रहे हैं। सरकार ने लोगों से घरों में ही रहने को कहा है और कई सार्वजनिक वाहन बंद कर दिए गए हैं, तो जाहिर है ग्राहकों की संख्या काफी कम हो गई है। ये थे एक दुकानदार के शब्द। दरअसल पेरिस में पिछले हफ्ते हुए हमलों के कुछ प्रमुख हमलावरों का संबंध ब्रसेल्स से ही है। यहाँ तक कि एक प्रमुख संदिग्ध सलाह अब्दुस्सलाम के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी बेल्जियम ही लौट कर गया है। अब्दुस्सलाम की जोर शोर से तलाश चल रही है। पिछले हफ्ते पेरिस में हुए हमलों के मामले में बेल्जियम के अधिकारियों ने अब तक 3 लोगों पर इस हमले में शामिल होने का आरोप लगाया है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।
बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पेरिस में हुए चरमपंथी हमलों जैसे हमले की चेतावनी, ब्रसेल्स हाई अलर्ट पर। रुख पाकिस्तान का करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब के झेलम शहर में कथित तौर पर कुरान के अपमान के मामले में लोगों ने एक फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया है। फैक्ट्री मालिक पर कुरान की प्रति जलाने का आरोप लगा है। गुस्साए लोगों ने फैक्ट्री में उस वक्त आग लगा दी जब मजदूर उसके भीतर काम कर रहे थे। फैक्ट्री मालिक अहमदिया समुदाय से हैं, जिसे पाकिस्तान में मुसलमान समुदाय नहीं माना जाता। इस बारे में और जानकारी के लिए बीबीसी उर्दू सेवा की हमारी सहयोगी ताबिंदा कोकब ने झेलम के जिला पुलिस अधिकारी मुजाहिद अकबर खान से बात की और घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा मांगा।
एक बंदे ने रिपोर्ट किया कि वहाँ पे कोई कुरान जलाए गए हैं, कुरान शरीफ। वो बंदा हमने पकड़ लिया, पकड़ के अरेस्ट कर लिया, उसको भिजवा दिया जेल। लेकिन इसी अतना में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए फैक्ट्री के बाहर और उन्होंने गेट तोड़ दिया और अंदर जाके चीजों को आग लगा दी। फिर मैं जो है वहाँ पहुंचा हूँ, मौके पे मैंने जाके जो लोग थे अंदर उनको इवेक्यूएट करवाया, उनको रेस्क्यू करा दिया, वो बच गए, शुक्र है खुदा का।
कितने लोग थे अंदर उस वक्त फैक्ट्री के
अंदर? कोई तकरीबन 15 बंदे थे, जो उनकी फैमिलीज थी एमडीओ की।
ये वहाँ रहते थे?
रेस्क्यू करा दिया। जी जी, वो शुक्र है खुदा का कि हमारे बड़े वक्त इकदाम से किसी की जान नहीं गई और लोग बच गए। लेकिन वो फैक्ट्री को आग लगाने में कामयाब हो गए। उसके बाद हमने उसको,
जो खबरें आ रही थी कि उनकी कॉलोनी को भी घेरे में ले लिया है लोगों ने, तो क्या वो कॉलोनी इस फैक्ट्री से बाहर थी या वही लोग थे जो अंदर रह रहे थे?
नहीं, नहीं, वो अंदर ही था सारा कुछ अंदर।
तो ये इल्जाम किसने लगाया था और जो जिस बंदे को आपने पकड़ा है उसके बारे में क्या तफसीलात है? अभी उसको आपने कस्टडी में रखा?
अभी तक तो ये सूरत हाल है, अभी हमने बंदा पकड़ के जुडिशियल कर दिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और जिसने इल्जाम लगाया था वो वहीं का ड्राइवर था फैक्ट्री का।
जिन लोगों ने वहाँ पे ये सारा कुछ किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है पुलिस ने?
उनके खिलाफ भी हम पर्चा दे रहे हैं और उन्हें भी करेंगे।
कितने लोगों को नामजद किया आपने?
वो तो कम से कम कोई 1000 के करीब बनता है।
तो नुकसान कितना हुआ है? सुना वहाँ गाड़ियों को भी आग लगी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी।
नुकसान तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन काफी गाड़ियाँ भी 4-5 जली हैं और उनका कोई सामान भी था घरों के अंदर, वो भी जल गया था। क्योंकि हम अभी और भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और कोशिश करें कि अमन जो है ना खराब ना हो, तो उस हिसाब से।
तो अमन के क्याम के लिए क्या इकदाम किए हैं अभी इलाके में? क्या है,
हैवी डिप्लॉयमेंट किए हैं जी, पेट्रोलिंग कर रहे हैं।
जो इर्द गिर्द जो अहमदी रहते हैं उनके सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया है?
जी जी, उन पे डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, हैवी किस्म की पुलिस लगा दी है।
ये थे झेलम के जिला पुलिस अधिकारी मुजाहिद अकबर खान। पाकिस्तान में ईश निंदा यानी कि कुरान के कथित तौर पर अपमान के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं और अधिकतर मामलों में हिंसक घटनाएं हुई हैं। पाकिस्तान से रुख भारत का करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कल से शुरू हुआ आर्ट समिट एक नकली गाय के चलते अचानक विवादों में घिर गया। गाय की डमी को समिट के आयोजन स्थल जवाहर कला केंद्र के ऊपर आसमान में लटकाया गया था। गाय की इस डमी पर कई लोगों की आपत्ति के बाद पुलिस ने इसे नीचे उतरवा दिया। कलाकार का कहना है कि पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक की गाय बनाई थी। क्या है ये पूरा मामला, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने जयपुर में इस गाय को बनाने वाले कलाकार सिद्धार्थ करनवाल से बात की।
आर्टवर्क हमारा जवाहर कला केंद्र में डिस्प्ले हुआ था। मैं अभी फिलहाल एक संदर्भ रेजिडेंसी प्रोग्राम है, ये एक आर्टिस्ट ग्रुप है जो हर बार नए आर्टिस्ट लोगों को होस्ट करता है। तो इस बार इस इंटरनेशनल कैंप का पार्ट मैं भी था और हमारा टॉपिक जो था वो दिया गया था कि हाउ डू यू सी द सिटी एज अ टूरिस्ट। तो मैंने ये दिखाया कि भाई जब टूरिस्ट आते हैं बाहर से तो वो सबसे पहले ये कूड़ा देखते हैं, तो इसको सबसे पहले साफ करना चाहिए। बाहर किसी ने, अब ये अननोन सोर्स है, मुझे भी नहीं पता, किसी ने कोई कंप्लेंट लॉन्च किया तो हमारे 11 बजे जब इनमें इवेंट था उसी समय में यहाँ पे बहुत सारी पुलिस पहुंच गई और उन लोगों ने हमें बोला कि आप इस आर्टवर्क को नीचे उतारिए क्योंकि ये आर्टवर्क जो है ये किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है।
आपने उनसे पूछा नहीं कि ये किस तरह से सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है?
मैंने उनको यही पूछा कि आप बताइए कि ये कौन सा लॉ है या आप किस धारा के उसमें आप इसको नीचे उतारना चाहते हैं, आप हमें एक्सप्लेन करें कि ये क्या, किस तरह से विवाद है, ये क्या है, ये मतलब बिना बात के आप इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं इस चीज के अराउंड। आप तो इन लोगों ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी।
इन लोगों ने मतलब किन्होंने,
जो पुलिस के जो लोग आए थे वो जो मतलब एक ही थाने से सारे, उनको कोई कंप्लेंट मिली थी तो सारे 15 एक लोग वहां पे आ गए और इन लोगों ने हमसे बहुत देर हमारे से बात किया। हम लोग उनको सिर्फ इसी बात पर बोल रहे थे कि आप हमें बता दीजिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, हम इसको अगर आप हम उतार सकते हैं तो उतार लेंगे। हम लोग के जो मेन ऑर्गेनाइजर्स थे मिस्टर चिंतन उपाध्याय और अनीश अहलूवालिया, तो ये लोग मेरे साथ इस बात पे टिके रहे। इतने में ये बवाल जो भी था ये बहुत बड़ा हो गया। उन लोगों ने फोर्सफुली इन दोनों को धक्का मार के अपनी वैन में बैठा लिया और ले गए पुलिस स्टेशन। वहां पे इनको 2 से 3 घंटे डिटेन करके रखा गया। हमें इन्फॉर्मेशन इतनी मिली कि भाई आप अपनी गाय उतारें, गाय को हमारे को हमारे हवाले करें और हम आपके दोनों जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको छोड़ देंगे। तो हमने फाइनली वो गाय हम लोगों को उतारनी पड़ी और वो गाय उतार के हमने इन लोगों को दे दी। इसी बीच में कई लोग और आए जो कि उसके ऊपर कुछ माला वाला चढ़ा के और बोलते हैं आपने अनादर किया है तो आप इसके ऊपर माला चढ़ाइए। अब मानिए प्लास्टिक की गाय पे आप माला चढ़ा के उसका आदर कर रहे हैं, ये कौन सा आदर है? ये जो आजकल जो विवाद है गाय के ऊपर उससे हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है। हम लोग तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि आप कूड़ा मत फेंकिए रोड पे, लोगों नॉर्मल आम आदमी को दिखाने के लिए हमने ऊपर किया था।
सिद्धार्थ, इस पूरे मामले में क्या पुलिस ने, प्रशासन ने आपके खिलाफ या आपके साथियों के खिलाफ किसी तरह का मामला दर्ज किया है?
इसी बात पे हमें डराया गया कि आपका FIR दर्ज हो रहा है। तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि बिना बात के इस FIR के सिलसिले में फंसे। तो हमने भी यही बोला कि आप पहले हमसे बात कीजिए, किसने कंप्लेंट किए वो बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं, इसमें क्या विवाद है। इस चीज को वो समझने को तैयार नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने फाइनली जो उन्होंने हमें कहा, हमने गाय नीचे उतार दी। वो गाय अभी सेफ जगह पे हम लोगों ने जाके रख दी। उन्होंने ये भी कहा कि चलिए आप इस इवेंट में मत दिखाइए इस चीज को क्योंकि ये विवादों में फंस सकता है। उनका कहना एक हद तक ठीक था बट उसके आगे हमें समझ नहीं आई कि उन लोगों ने इतना बड़ा एक्शन लेने का क्या जरूरत था इस चीज।
ये थे गाय को बनाने वाले कलाकार सिद्धार्थ करनवाल। तो नकली गाय पर जयपुर आर्ट फेस्टिवल में विवाद।
बात इनके हकों की।
कुछ लोग हमें कहते हैं कि नकाब में रहो, कुछ लोग कहते हैं कि नकाब नहीं पहनना चाहिए, ये औरतों के ऊपर जाती है। हमारा कहना है हमें तय करने दो कि हमें क्या करना है।
कहानियाँ इनकी विविध चुनौतियों की।
हमारी जगह अगर लड़का होता, उनका बेटा होता तो क्या वो नहीं करता क्या? मेरे लिए वो चैलेंज था कि मुझे ये करके दिखाना है, अगर लड़के कर सकते तो लड़के क्यों नहीं कर सकती।
मुझे ना कुछ नाम से बहुत चिढ़ाते थे इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मेरा नामकरण किया ना तब मुझे निकिता नाम दिया गया है।
महिलाओं के नाम हमारी विशेष श्रृंखला
आधी आबादी
100 चेहरे
सोमवार 23 नवंबर से शाम 7:30 बजे PVC हिंदी के कार्यक्रम दिन भर में
और सुबह 8 बजे विश्व भारती में
100 महिलाओं से होगी मुलाकात bbchindi.com पर
और BBC हिंदी के YouTube चैनल पर भी।
आधी आबादी 100 चेहरे।
और अब नमस्कार भारत में अखबार के पन्ने पलटने का वक्त आ चुका है। समीर आत्मज मिश्र बखूबी इस काम को अंजाम दे चुके हैं। समीर, क्या कह रहे हैं अखबार?
मोहनलाल जी, एक आज अलग अलग खबरें हैं अखबारों में जो प्रमुखता से छाई हुई हैं। एक तो अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आसियान सम्मेलन में गए हुए हैं, उस खबर को भी अखबारों ने बड़े प्रमुखता से जगह दी है। हिंदुस्तान लिखता है भारत आसियान देश सड़क मार्ग से जुड़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने संपर्क बढ़ाने के लिए 66 अरब रुपए के ऋण का ऐलान किया। थाईलैंड तक सड़क बनाने की उन्होंने घोषणा की है। भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे परियोजना को साल 2018 तक पूरा किए जाने की बात कही मोदी ने।
मेरे सामने जो जनसत्ता है इसमें बड़ी सुंदर तस्वीर है जिसमें कि सारे आसियान देशों के
देख रहा हूं
प्रमुख नेता हैं और एक बहुत ही तरीके से सारे हाथ में हाथ डाले हुए हैं और
एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं दूसरे
और लिखा है मिले हाथ मेरा तुम्हारा तो साथ बने हमारा
जी। उसके अलावा एक दूसरी खबर जो है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं फ्रांसुआ ओलांद, उनको 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है दिल्ली में यहाँ राजपथ पर, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। और मैं देख रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस ने उसको अपनी लीड खबर बनाया हुआ है, हालांकि और अखबारों में भी वो है खबर छपी हुई है। ओलांद इन्वाइटेड एज रिपब्लिक डे गेस्ट फॉर फ्रेंच प्रेसिडेंट सेकेंड स्टेट विजिट टू इंडिया, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कल आईएस यानी जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव मंजूर किया गया, वो खबर भी कई अखबारों में है। कुछ ने उसको अपनी लीड खबर बनाया है, अमर उजाला ने, द हिंदू ने भी उसको अपनी प्रमुख खबर बनाया है। अखबार लिखता है यूएन ऑथराइजेज मेंबर्स टू रीडबल फाइट अगेंस्ट आईएस।
और अमरीका के जो राष्ट्रपति बराक ओबामा है उन्होंने कुआलालंपुर में कहा है कि उखाड़ फेंकेंगे आतंकी नेटवर्क
यानी जितने भी जो सम्मेलन हो रहे हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन, उनमें आईएस इस्लामिक स्टेट ही समय छाया हुआ है। अमर उजाला की ये खबर की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक बयान छपा हुआ है, गो मांस खाने वालों का हरियाणा में कोई स्थान नहीं।
और यही पर हम बता दें कि कुछ दिनों पहले जनसत्ता यानी कि इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ी खबर छपी थी जिसमें कि मनोहर लाल खट्टर के हवाले से ये कहा गया था कि यदि आप बीफ खाते हैं तो आपको देश छोड़ना पड़ेगा
जी।
और इसका जो ऑडियो है वो हमने bbchindi.com पर भी लगाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते एक ये कार्टून पढ़ना चाहता हूँ, दरअसल जनसत्ता का है। नीतीश पीएम बनने के लिए आए, फारूक कह रहे हैं,
फारूक आया था उनका बयान,
और लालू प्रसाद और नीतीश कुमार कह रहे हैं हाँ बिहार तो बच्चे संभाल ही लेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक रिपोर्ट सुनते हैं। दिल्ली में आपको दो तरह के रिक्शे नजर आएंगे, एक है पारंपरिक रिक्शा जिसे कि आम आदमी खींचता है और दूसरा बैटरी से चलने वाले रिक्शे। लोग जहां बैटरी वाले रिक्शों को पसंद कर रहे हैं, वहीं पारंपरिक रिक्शा चलाने वालों का कहना है कि नए रिक्शों के चलते उनकी कमाई पर बुरा असर पड़ा है। एक रिपोर्ट सुनिए अमित भास्कर से।
दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों एक अलग ही घमासान है। ये घमासान है साइकिल रिक्शा चलाने वालों और ई रिक्शा चलाने वालों के बीच में। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में इस समय करीब 1.5 लाख ई रिक्शा सड़कों पर हैं, तो वहीं साइकिल रिक्शा की बात करें तो इनकी संख्या 5 लाख से भी ज्यादा है। ई रिक्शा न सिर्फ तेज हैं बल्कि साइकिल रिक्शा के जैसे इनमें पैडल भी नहीं मारना पड़ता है। बैटरी से चलने वाली ई रिक्शा में आपको केवल एक्सीलरेटर और ब्रेक का ध्यान रखना पड़ता है और चल पड़ी आपकी गाड़ी। लेकिन ई रिक्शा की यही खूबी साइकिल रिक्शा चलाने वालों पर शायद भारी पड़ रही है। दिल्ली के चावड़ी बाजार में साधारण रिक्शा चलाने वाले कालीचरण बताते हैं,
इतना फर्क चला है, पहले 500-600 बच जाते थे, अब तो बस रोटी पानी खर्चा पानी निकलता है।
कुछ ऐसी ही शिकायत है पुरानी दिल्ली में रिक्शा चलाने वाले मोहम्मद समीर की।
जब से बैटरी वाली गाड़ियाँ आई हैं इनसे हम पे बहुत फर्क पड़ा है। ये लगा लीजिए कि जो हमारा 100% कारोबार था उसमें से 100 में से कट के ओनली 35% या 40% रह गया है, क्योंकि जो काम हमारा 20 में था, जो जायज 20 बनते थे, हमारी टांगों की मेहनत थी, इन्होंने वो एस्केलेटर के जरिए से 10-10 रुपये में काम बना लिया तो हमारी तो पेट पे लात लग गई। आज हमारा वो दौर है कि हम 150 रुपये में गुजारा कर रहे हैं रिक्शा चला के, बस बाकी सारा कमाई जितनी भी कमाई है यही कमाते हैं, हम कुछ नहीं कमाते। यहाँ से लाल किला कितना होगा, आप ये मान के चलिए होगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तक के दायरे में आप DTC में भी अगर बैठोगे, लोकल टिकट 5 का भी ले लो, तो वो भी एक स्टॉप जाके आपसे 5 रुपये की टिकट फाड़ देता है कंडक्टर। अब हमारा ये होता है कि अगर मान लो हम ये इसमें सवारी बिठा के ले जा रहे हैं इस वाले रिक्शे में, तो यहाँ से हमारे लाल किले का एक सवारी का जायज़ कम से कम 25-30 रुपये तो बनता है। और ये बैटरी वाली जो है ये 10 रुपये में बिठाल के ले आती हैं, इससे हमारा कोई टारगेट नहीं है बिल्कुल, हमारा ये समझ लो कि खत्म है बिल्कुल रिक्शा, ये तो बस खाली नाम चलाओ के लिए चल रहे हैं जितने भी दिन चल रहे हैं।
दिल्ली में ज्यादातर रिक्शा चालक या तो उत्तर प्रदेश से आते हैं या बिहार से। पीपल्स ट्रांसपोर्ट काउंसिल नाम की संस्था द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 64% रिक्शा चलाने वाले लोग साल के कुछ ही समय रिक्शा चलाते हैं और बाकी समय वो अपने राज्य में वापस जाकर खेती करते हैं। ऐसे में ये लोग रिक्शा खरीदने के बजाय किराए पर चलाते हैं, और जब रिक्शा ही किराए पर चलाना पड़े तो 1 लाख के ई रिक्शा के बारे में कोई कैसे सोचे।
एक रिक्शा करीब 1 लाख के बाद साइड भी नहीं, तो हम कहाँ से कोशिश करते बोलो।
खरीदने की तो खैर कोशिश नहीं की अभी तक, क्यों जब हमारा काम बड़े से चल जाता है तो खरीदने की क्या जरूरत है।
ई रिक्शा चलाने वाले इकबाल इस अंतर को रोजी रोटी कमाने के अलग अलग तरीकों के रूप में देखते हैं।
ये तो ऊपर वाले की वो है, ये हर किसी को रोजी ऊपर वाला ही देता है जिसके नसीब में जितनी लिखी है।
हालांकि दिल्ली में ई रिक्शा के द्वारा हुए एक दुर्घटना में 3 साल के बच्चे की मौत के बाद बदले गए नियमों को लेकर ई रिक्शा चलाने वाले भी कई तरह की शिकायत करते हैं। ई रिक्शा चलाने वाले उस्मान,
हमारे खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, ये लेन लगा खड़े रहते, अब हम लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे बताओ, अब बाहर हम जान सकते ये अंदर ही अंदर के अलावा बाहर जाएंगे तो गाड़ी पकड़ लेते हैं।
दिल्ली की पवित्रा सिंह अक्सर ही ई रिक्शा से यात्रा करती है।
ई रिक्शा पहली बात इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, रीजनेबल होता है कम्पेयर टू नॉर्मल रिक्शा, थोड़ा जल्दी पहुँचाता है कम्पेयर टू नॉर्मल।
तो क्या इस अंतर को मिटाने के लिए ई रिक्शा और साइकिल रिक्शा के काम करने के क्षेत्रों को बांट देना चाहिए। मोहम्मद समीर,
अलग इलाका हो तो वो चलेगा, वो बाहर बाहर के लिए कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर के लिए हमारा ये रहना, क्यों हमारा जो मेन काम है वो अंदर का होता है। इनका जैसे कोई बुकिंग मिल गई, पुल पार जाना है या रोड बाईपास कहीं भी घूमना है तो ये अपना वहाँ चक्कर राउंड मार सकते हैं। अभी अंदर ही अंदर घुमाएंगे तो इनसे काफी परेशानी होती है ना, जाम भी है, ट्रैफिक, सो बातें हो जाती है। फिर
दिल्ली में ई रिक्शा के लिए लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया अभी साफ नहीं है, जिससे यह समस्या और भी जटिल हो जाती है।
पारंपरिक रिक्शा बनाम बैटरी से चलने वाले रिक्शे, अमित भास्कर की रिपोर्ट। उल्लू शब्द अपने आप में किसी की बेवकूफी को जाहिर करने के लिए काफी है, और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ये शब्द गवारा हो। लेकिन बनारस में उलूक महोत्सव मनाने की परंपरा हिंदी के हास्य कवि कृष्णा देव प्रसाद गौड़ यानी बेढब बनारसी के जन्म दिवस पर पिछले कई सालों से चली आ रही है। मकसद है समाज और राजनीति के क्षेत्र में साल भर होने वाली उल्लूपने की हरकतों को कविता के माध्यम से श्रोताओं के सामने लाना। परंपरा के मुताबिक नागरी प्रचारणी के परिसर में शुरू होने के पहले बाकायदा बनारस के टाउन हॉल मैदान से उल्लू महाराज की बारात निकाली गई और आरती भी हुई। आइए बनारस से सुनते हैं स्थानीय पत्रकार रोशन कुमार की आंखों देखी।
गंगा घाट किनारे बसा शहर बनारस यहाँ की अल्लड़पन और मस्ती के लिए भी विश्वविख्यात है। इसी अल्लड़पन और मस्ती में से एक उलूक महोत्सव भी है, और उलूक महोत्सव शुरू होने के ठीक पहले उल्लू की बारात निकाली जाती है। इस समय वाराणसी के टाउन हॉल मैदान से उल्लू की बारात निकाली जा रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है उलूक महोत्सव और क्या है इसका मकसद आयोजन से।
उलूक महोत्सव देश की और दुनिया की विसंगतियों को चोट करने वाला यह एक महान आयोजन है। हम यह मानते हैं कि देश में और दुनिया में जिस ढंग का उल्लूपना चल रहा है वह उल्लूपना दुनिया के लिए और देश के लिए उचित और सम्यक नहीं है। तो इस नाते उलूक महोत्सव का आयोजन हम प्रतिवर्ष करते हैं, और जो विसंगतियां हमें नजर आती हैं उन तमाम विसंगतियों पर प्रहार करना चाहते हैं।
पंक्तियां पढ़ने के पहले बकायदे उल्लू महाराज की आरती हुई, और फिर प्रदेश भर से आए कवियों और शायरों ने मन से श्रोताओं के दिल को जीत लिया।
बनारस में और नाम तुम्हारे सब कुछ होता, तुम ही हो इसमें ओम जय उल्लू देवा। करके गए बन के कई सियार, जंगल में मंगल हुआ, जीता पुनः बिहार, बाहों कला था मगर फुस हो गया बम, बड़ बोले के बोल सब गिरे भूमि पर धम।
पिता ने पुत्र के चरण स्पर्श किए और पूछा क्या क्या है मेरे लिए। पुत्र बोला हे मेरे चिरंजीव बाप, इससे पहले करूं सुनू वार्तालाप एक बीड़ी सुनवाई।
लोग रहते थे जहाँ पर मुँह छुपा कर, मैं उन्हीं गलियों में दर्पण।
बनारस से रोशन कुमार बता रहे थे कि किस तरह से उलूक महोत्सव मनाया जाता है। अगले कार्यक्रम यानी कि विश्व भारती में हम आपको बीबीसी न्यूज मेकर्स में मिलवाएंगे अभिनेता रजत कपूर से, लेकिन इस समय बात करेंगे उन खबरों की जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
गुजरात में आज अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर के नगर निगमों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 29 नवंबर को जिला पंचायतों, तालुका पंचायतों और नगर पालिका के लिए चुनाव होंगे। आरक्षण के लिए पटेल समुदाय के आंदोलन के बाद गुजरात की मुख्यमंत्री और पटेल समाज से संबंध रखने वाली आनंदीबेन पटेल के लिए ये चुनाव बड़ी चुनौती माने जा रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीमों के बीच जारी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में भारत को जीत कर भी ड्रॉ से संतुष्ट करना पड़ा था। हांगकांग में पिछले साल हुए लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के बाद वहां पहली बार चुनाव हो रहे हैं। 18 काउंसिल्स के लिए होने वाले ये चुनाव राजनीतिक परीक्षा के तौर पर देखे जा रहे हैं।
और अब कार्यक्रम में खेल की खबरें सुन लेते हैं।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया ने टेनिस के कोर्ट पर लंदन में खेले जा रहे एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पुरुषों के युगल वर्ग के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 8वीं वरीयता हासिल बोपन्ना मर्जिया की जोड़ी ने दमदार खेल दिखाते हुए कल सेमीफाइनल में क्रोएशिया के इवान डोडिंग और ब्राजील के मार्सिलो मेलो की 3री वरीयता हासिल जोड़ी को 6-4, 6-2 से हरा कर बाहर का रास्ता दिखाया। उल्लेखनीय है कि बोपन्ना मर्जिया की जोड़ी ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत शीर्ष वरीयता हासिल जोड़ी बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन को हराकर की थी। उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर हांगकांग ओपन के फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। महिला एकल वर्ग का फाइनल आज शीर्ष वरीयता हासिल स्पेन की कैरोलिना मारिन और गैर वरीयता हासिल जापान की नोजोमी ओकुहारा के बीच खेला जाएगा। कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में कैरोलिना मारिन ने 8वीं वरीयता हासिल चीन की वांग यिहान को 21-18, 21-16 से मात दी, तो दूसरे सेमीफाइनल में नोजोमी ओकुहारा ने 7वीं वरीयता हासिल थाईलैंड की रथचानोक इंचानोन को 26-24, 21-6 से हराया। वहीं पुरुष एकल वर्ग का फाइनल आज गैर वरीयता हासिल चीन के तियान हाउवेई और मलेशिया के ली चोंगवेई के बीच खेला जाएगा। कल सेमीफाइनल में तियान ने इंडोनेशिया के गिटिंग एंथनी को कड़े संघर्ष में 18-21, 21-11, 21-6 से हराया, जबकि ली चोंगवेई ने हांगकांग के लॉग एंगस को 21-19, 21-14 से हराया। वहीं आईपीएल अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वो अपनी घरेलू सीरीज संयुक्त अरब अमीरात में खेलना जारी रखने की जगह अपने ही देश में सुरक्षित स्थल बनाना शुरू करे। राजीव शुक्ला ने कहा कि अगर पाकिस्तान संयुक्त अरब अमीरात में खेलना जारी रखेगा तो उसके क्रिकेट को धीरे धीरे नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके अनुसार लाहौर को आसानी से सुरक्षित स्थल बनाया जा सकता है। इसके बावजूद राजीव शुक्ला ने स्पष्ट किया कि भारत तभी लाहौर में खेलेगा जब पाकिस्तान आईसीसी को सुरक्षा की गारंटी दे और दूसरे देशों को भी वहां खेलने में कोई आपत्ति ना हो। उधर मैदान में खेलते समय स्ट्रोक का शिकार बने 25 वर्षीय नामीबियाई क्रिकेटर रेमंड वान स्कूर की कल अस्पताल में मौत हो गई। एक घरेलू मैच के दौरान बैटिंग करते समय रेमंड को स्ट्रोक की शिकायत हुई थी, इसके बाद वो कोमा में थे। रेमंड वान ने 92 फर्स्ट क्लास मैचों में 4,303 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 2,618 रन बनाए।
और इससे पहले कि कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। बेल्जियम में राजधानी ब्रसेल्स में पिछले हफ्ते पेरिस में हुए चरमपंथी हमलों जैसे हमले की चेतावनी के बाद ब्रसेल्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बांग्लादेश में 2 विपक्षी नेताओं को युद्ध अपराध के आरोप में फांसी दे दी गई है। सलाहुद्दीन कादिर चौधरी और अली एहसान मोहम्मद मुजाहिद पर 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए स्वतंत्रता युद्ध के दौरान युद्ध अपराध का आरोप था। इसराइल की पुलिस का कहना है कि ताज़ा हमलों में 4 इसराइली नागरिकों की कुछ फलस्तीनियों ने छुरा भोंक कर हत्या कर दी है। उत्तरी म्यांमार में हुए भूस्खलन में से कम 40 लोगों के मारे जाने की आशंका है और दर्जनों लोग लापता हैं। श्रीलंका की प्रमुख तमिल पार्टी ने सरकार से मांग की है कि खुफिया हिरासत सेल्स की सही तरीके से जाँच की जाए। क्राइमिया से मिल रही खबरों में कहा गया है कि शनिवार रात से ही यहाँ बिजली नहीं आ रही है क्योंकि यूक्रेन से आने वाली बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो की कमान संभाल रहे थे देवाशीष। एक घंटे बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। मोहनलाल शर्मा को तब तक के लिए विदा दें। नमस्कार।